रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।
आज है 6 मार्च, दिन शनिवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें रोहित जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। हांगकांग में चुनावों में बड़े बदलावों की तैयारी। चीन का दावा, देश भक्तों को सौंपी जाएगी हांगकांग की कमान। म्यांमार में टिकटॉक वीडियोस के जरिए प्रदर्शनकारियों को जान से मारने की दी जा रही धमकी। नासा के मंगलयान परसिवियरेंस ने मंगल की सतह पर किया 6.5 मीटर का पहला मूव। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में रोहित जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बीजिंग में चीन की संसद की सालाना बैठक शुक्रवार को शुरू हो गई, जिसमें उसने हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव के संकेत दिए हैं। चीन हांगकांग के शासन की कमान कथित रूप से देशभक्त लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट सुनिए हमारे सहयोगी शादाब हसन खान से।
चीन ने अपनी संसद की सालाना बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जगत को चेतावनी दी है कि हांगकांग में दखल न दें। चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC से कहा कि चीन ऐसी किसी भी कोशिश का कड़ाई से बचाव करेगा। चीन ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक में घोषणा की कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएंगे, ताकि हांगकांग का भार देशभक्त लोगों को दिया जा सके। समझा जा रहा है कि ये एक संकेत है कि सरकार अब वहाँ किसी भी किस्म के असंतोष को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बारे में लिए गए फैसले के एक मसौदे पर संसद की बैठक में चर्चा होगी, जो एक सप्ताह तक चलनी है। बीजिंग में इस बैठक के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों प्रतिनिधि जुटे हैं। NPC के उपाध्यक्ष वांग चिन ने शुक्रवार को कहा कि हांगकांग का संविधान समझे जाने वाले हांगकांग के बेसिक लॉ दस्तावेज में कई बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में अभी कुछ ऐसी कमियां हैं, जिसकी वजह से विपक्षी कार्यकर्ता हांगकांग की आज़ादी की मांग उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन खतरों को दूर किए जाने की जरूरत है, ताकि हांगकांग के चरित्र के हिसाब से एक लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था तैयार की जा सके। हांगकांग में पिछले वर्ष सभी लोकतंत्र समर्थक विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद से वहां विपक्ष लगभग खत्म हो गया है। जबकि हाल तक हांगकांग में विपक्ष का एक तबका था, जो स्थानीय चुनाव में कामयाबी हासिल करता रहा था।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूं रोहित जोशी। अब रुख अगली खबर का। म्यांमार में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक ओर म्यांमार के कई पुलिसकर्मी पलायन कर भारत की शरण में आए हैं, तो दूसरी ओर म्यांमार की सेना टिकटॉक पर वीडियो बनाकर प्रदर्शनकारियों को धमकी दे रही है। हालांकि अब टिकटॉक ने इन वीडियोस को हटाने का फैसला किया है, साथ ही ऐसे अकाउंट बंद भी किए जा रहे हैं। डिजिटल राइट्स ग्रुप म्यांमार ITC फॉर डेवलपमेंट ने कहा है कि उसे 800 से अधिक सैन्य समर्थकों के ऐसे वीडियोस मिले हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टिकटॉक पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक सेना के जवान को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि मैं आज रात पूरे शहर में गश्त करने जा रहा हूं, जिसे भी देखूंगा शूट करूंगा। अगर आप शहीद बनना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हालांकि आलोचनाओं के बाद टिकटॉक ने सारे वीडियोस हटा दिए हैं। इसके अलावा फेसबुक ने भी सेना से जुड़े सभी पेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यूट्यूब के प्रवक्ता का कहना है कि हमने सामुदायिक दिशा निर्देशों और कुछ कानूनों के मद्देनजर म्यांमार की सेना की ओर से चलाए जा रहे या उससे संबंधित 5 यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगा दी है। इनमें सरकारी चैनल MRTV भी शामिल है। इधर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के बंदरगाह के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर शुक्रवार की देर शाम एक आत्मघाती बम हमला हुआ है। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने और 30 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि यह हमला हथियारबंद संगठन अल शबाब की ओर से कराया गया है, जिसके संपर्क अलकायदा के साथ है। यह संगठन अक्सर मोगादिशु में इस तरह के हमलों में शामिल रहा है। इसी रेस्टोरेंट को पिछले साल भी निशाना बनाया गया था। इस बीच अमेरिका में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हमले के सिलसिले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में उनके सहयोगी रहे विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी फेडरिको क्लेन को FBI ने गिरफ्तार कर लिया है। फेडरिको पर संसद में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश, हिंसक और अव्यवस्थित आचरण के अलावा कांग्रेस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम में बाधा डालने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। फेडरिको ट्रंप प्रशासन के ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्हें कैपिटल हिल पर हमला करने के मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना करना होगा। 42 साल के फेडरिको क्लेन ने ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में काम किया था और उन्होंने ट्रंप की जीत के तुरंत बाद ही विदेश विभाग में मध्य स्तर के पद पर नियुक्ति पाई थी। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसके अधिकारियों ने गुरुवार की रात को एक यात्री विमान के अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की वेबसाइट में बताया गया है कि रीजनल कमर्शियल जेट ईरान एयर फोकर 100 के अपहरण की उस वक्त कोशिश की गई जब वह अहवाज शहर से मशाद की ओर जा रहा था। अगली खबर भी ईरान से ही है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी ताकतों के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू करने के संकेत दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने शुक्रवार को कहा है कि उनका देश जल्द ही इसके लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम लेकर आएगा। यूरोपीय देशों के सूत्रों से भी यह कहा गया है कि ईरान सकारात्मक पहल कर रहा है। जरीफ ने इसे लेकर एक ट्वीट किया कि ईरान जल्द ही कूटनीतिक माध्यमों के जरिए एक ठोस कार्य योजना पेश करेगा। गौरतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नीतियां वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई तय करते हैं, न कि सरकार या राष्ट्रपति। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मंगलयान परसिवियरेंस मंगल ग्रह के अध्ययन के अपने काम पर जुट गया है। उसने अपने पहियों को पहली बार घुमाया और एक छोटी सी कुल मिलाकर 6.5 मीटर की दूरी तय की। न्यूज वेबसाइट BBC से बात करते हुए नासा की डेप्यूटी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैट स्टैक मॉर्गन की ओर से परसिवियरेंस के इस मूवमेंट को महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने कहा है कि रोवर अब भी इंजीनियरिंग जांचों से गुजर रहा है। परसिवियरेंस को मंगल में पहुंचे अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।